अब जेरा में से
Mom.
गीता मैराथन महामहोत्सव की, सब वेद भक्त वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यम् नरोत्तमम्, देवीं सरस्वती व्यासम्। सो जयामुदीरये नष्टप्राये स्वभद्रेषु, नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके, भक्तिर्भवति नैष्ठिके। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोनिष्ठं स्थापितं येन भूतले क्षयं रूपं प्रदानयं ददाति सौभाग्यं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवां च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं सादरेकं सारभूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यं श्रीराधा कृष्णपादां श्रीविशाखानन्दां। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमामि, सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी, विश्वभानुसेवी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावने गो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे।
भूताम् सुरतो पंगो मम मन्दमतेर्गतिः, मत्सर्वस्वपदाम्बुजो राधामदनमोहनो।
हरे कृष्ण।
रविवार के प्रीति भोज महोत्सव में आए हुए सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं। एक उत्सव होता है, एक महोत्सव होता है। आप जानते हैं उत्सव का अर्थ क्या होता है? कौन कौन जानता है उत्सव का अर्थ क्या होता है? फेस्टिवल। उत्सव, उत का अर्थ होता है ऊपर और सव का अर्थ होता है दुख। जो हमको दुख से ऊपर रखे उसको उत्सव कहते हैं। जैसे जन्म उत्सव, विवाह उत्सव, आज कई विवाह उत्सव हैं। लेकिन ये जो प्रीति भोज कार्यक्रम है ये महोत्सव, सत्संग जो है उसको महोत्सव कहते हैं। क्यों महोत्सव कहते हैं? देवतागण श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में बताते हैं महोत्सव किसको कहा जाता है। ध्यान से सुनिए। नयत्र वैकुंठ कथा सुदापगा न साधवो भगवस्तद आश्रया न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोको विनवेश सेव्यमाना। देवता बताते हैं जब इस प्रकार के उत्सव यहाँ पृथ्वी पर होते हैं, विशेषकर भारत भूमि में, वर्तमान समय में तो प्रभुपाद की कृपा से पूरे विश्व में होते हैं, अब भारत भूमि सीमित नहीं रहा। आप सबको शायद पता हो जन्माष्टमी के दिन भी लंदन जैसे मंदिरों में 50,000 से ज्यादा लोग आते हैं मंदिर में। भक्ति मैनर जो मंदिर है वहां पर 50,000 से ज्यादा आते हैं, मैं तो 50 ही बता रहा हूँ। और वहां भी बड़े पैमाने में ये फेस्टिवल होता है और यहाँ तक कि वहां की महारानी भी आती है। तो ये प्रभुपाद की कृपा से अब तो ये महोत्सव पूरे विश्व में संपन्न हो रहे हैं। लेकिन महोत्सव बताते हुए महोत्सव किसको कहते हैं? न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पदा न साधवो भागवत आश्रय न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि नवे सेव्य मान। देवता कहते हैं कि जहां भगवान के भक्तों का संग है, वैकुंठ कथा जहां भगवान के भक्तों का संग मिले और भगवान के भक्तों के संग में भगवान की कथा, वैकुंठ सुधा पदा, सुधा कथा, सुधा पदा कथा अमृत। तो पहला है जहां भगवान के भक्तों का संग है और भगवान के भक्तों के संग में भगवान की कथा जहां अविरल चलती रहती है, और यज्ञेश मखा जहां भगवत प्रसाद का वितरण होता है। जिस फेस्टिवल में भगवान के भक्तों का संग, भगवान की कथा और भगवत प्रसाद का वितरण होता है उसको महोत्सव कहते हैं, महान उत्सव। और देवता कहते हैं कि जहां जिस स्थान में ये तीन वस्तुएं नहीं है, सुरेश लोको अपि नवे सेव्यताम, अगर वो स्वर्ग भी हो, सुरेश लोको अपि, सुरेश लोक कहते हैं सुरेश इंद्र को कहते हैं, और सुरेश लोक मतलब स्वर्ग, अगर स्वर्ग जैसी भी सुविधा है या स्वर्ग भी हो लेकिन वहां पर ये तीन वस्तुएं नहीं है, तो बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे स्थानों का सेवन नहीं करते, मतलब ऐसे स्थानों में नहीं जाते हैं, नहीं रहते हैं। तो जो लोग ऐसे स्थानों का सेवन करते हैं अर्थात ऐसे स्थानों में उपस्थित होते हैं उनको क्या कहा जाएगा? बुद्धिमान व्यक्ति। तो वास्तव में आप सभी बुद्धिमान हैं कि ऐसे स्थान में उपस्थित हुए हैं जहां भगवान के भक्तों का संग है, भगवान की कथा है और भगवत प्रसाद है। ऐसे उत्सव में, ऐसे रविवार के प्रति भोज महोत्सव में आप सभी आए हैं, तो आपका हम इस्कॉन की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। और आइए हम अभी कथा प्रारंभ करते हैं। आप सभी को विदित होगा कि 13 तारीख को एकादशी है, सब जानते हैं कौन सा एकादशी है, मोक्षदा एकादशी है, मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी। और इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ गया जब इस एकादशी के दिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जाकर भगवद गीता का उपदेश दिया। इसी एकादशी के दिन भगवान ने भगवद गीता का उपदेश किया था, आप सभी जानते होंगे। इसलिए इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज ने इस गीता जयंती, इस एकादशी को मध्य में रखकर इस पूरे महीने को गीता जयंती महीना मानकर मैराथन का प्रारंभ किया। मैराथन का अर्थ होता है भगवत गीता वितरण की दौड़। सभी भक्त दौड़ रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं भक्त कम है और इस समय भक्त मंदिर में कम रहते हैं, सब दौड़ लगा रहे हैं। क्या दौड़ लगा रहे हैं, सबसे ज्यादा कौन भगवत गीता वितरण करेगा, प्रभुपाद के बुकों को कौन ज्यादा वितरण करेगा, इस दौड़ में रहते हैं, दौड़ते रहते हैं दूर दूर तक और भगवत गीता का वितरण करते हैं। ये क्यों वितरण करते हैं, भगवत गीता का क्या महत्व है, भगवत गीता का क्या अर्थ है, इस पर आज हम थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। वैसे जिसने भारत भूमि में जन्म लिया है वह हर व्यक्ति भगवत गीता से अवगत है, लेकिन यहाँ पर एक समस्या है कि भारत में भगवत गीता को सभी मानते हैं लेकिन भगवत गीता की कोई नहीं मानता, बहुत कम लोग मानते हैं, ये प्रॉब्लम है। तो भगवत गीता आज से 5000 से ज्यादा 5200 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने इसे अर्जुन को सुनाया था, आप सभी जानते हैं। अर्जुन को क्यों सुनाया, भगवान ने क्यों अर्जुन का ही चॉइस किया, तो भगवान भगवत गीता के चौथे अध्याय में इसका उत्तर देते हुए बताते हैं, कहते हैं कि भक्तो असी चे मे सखा चेति, हे अर्जुन ये दिव्य ज्ञान मैं तुमको प्रदान कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और सखा चेति और तुम मेरे सखा भी हो। अर्जुन जो थे भगवान के साक्ष्य भाव भक्त थे, भगवान की भक्ति जिसको भाव भक्ति या प्रेम भक्ति कहते हैं वो पांच रूपों में की जाती है, पांच भावों में, शांत, दास्य, साक्ष्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो अर्जुन जो थे वो साक्ष्य भाव के भक्त थे। तो भगवान कहते हैं कि तुम मेरे सखा भी हो और भक्त भी हो, इसलिए मैं तुम्हें ये भगवत गीता का दिव्य उपदेश प्रदान कर रहा हूं। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन को कि तुम मेरे भक्त हो, सखा भक्त हो। तो जो व्यक्ति गीता की टीका लिखना चाहता है या गीता पर कुछ भाष्य देना चाहता है तो वो अगर इस प्रकार अर्जुन का अनुसरण करता है तो वो गीता का भाष्यकार प्रमाणित है, वो उचित है। लेकिन अर्जुन का अनुसरण किए बिना अगर कोई गीता पर भाष्य करता है तो वो भाष्य उचित नहीं है। अर्थात कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करके उनके शरणागत होकर उनको भगवान के रूप में स्वीकार करके और उनका भक्त बनकर, ऐसा भक्त अगर भगवत गीता पर टीका लिखता है तो वो टीका प्रमाणित है, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भारत में या विश्व में कई टीकाकारों ने टीकाएं लिखी हैं, जिसमें से ज्यादातर भक्त नहीं है। जैसे अर्जुन भगवान को, अर्जुन कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किए, पर ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान, हे प्रभु आप पर ब्रह्म हैं, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, इस प्रकार से भगवान को स्वीकार किया और उनका भक्त बने। इसी प्रकार कोई कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करता है और उनका भक्त है, अगर उसकी टीका है तो वो ठीक है। कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जैसे आप देखेंगे कि विश्व में तीन ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं, इस्लाम में पुराण प्रसिद्ध है, मुख्य ग्रंथ है, क्रिश्चियनों में बाइबल मुख्य ग्रंथ है, और सनातन धर्म में हम गीता को मुख्य ग्रंथ मानते हैं। ये तीन विश्व के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं। तो जो कुरान है उसको मोहम्मद हजरत पैगंबर ने कहा है, और बाइबल को यीशु क्राइस्ट ने कहा है, और भगवत गीता कृष्ण ने कहा है। अगर आप इन तीनों में देखेंगे तो कुरान जो मोहम्मद हजरत पैगंबर कहते हैं, तो कुरान में मोहम्मद हजरत पैगंबर कहते हैं कि मैं खुदा का पैगंबर हूं, मैसेंजर हूं। मोहम्मद हजरत पैगंबर ने ये नहीं कहा कि मैं खुदा हूं, मैं खुदा का मैसेंजर, इसी को उर्दू में पैगंबर के पैगाम देने वाला, उनका संदेश वाहक हूं, उनका संदेश देने के लिए आया हूं। जैसे प्रभुपाद जी कृष्ण का संदेश देने के लिए अमेरिका गए, ऐसे मोहम्मद हजरत पैगंबर खुदा का संदेश देने के लिए आए, और उन्होंने जो संदेश दिया है वो ही है कुरान। तो उसमें उन्होंने अपने आप को खुदा का, भगवान का मैसेंजर बताया, पैगंबर बताया, दूत बताया। अच्छा, वहां पर खुदा का स्थान खाली है। बाइबल जो है, बाइबल में यीशु क्राइस्ट कहते हैं आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का, बोलिए, मैं भगवान का पुत्र हूं। तो वहां भी भगवान का जगह। अब भगवत गीता को लीजिए, भगवत गीता में दसवें अध्याय के आठवें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभव मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भाव समन्विता। यहां पर भगवान का स्थान खाली, इस रिक्त स्थान की पूर्ति की गई है, इसलिए भगवत गीता सर्वोपरि। यहां पर भगवान कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभव, भव का अर्थ होता है, भव का अर्थ होता है जन्म, भव बंधन कहते हैं जन्म का, तो भव का अर्थ होता है जन्म। अहम सर्वस्व प्रभव, इस सारे ब्रह्मांड का जन्मदाता मैं हूं। अहम सर्वस्व प्रभव, सब कुछ का प्रकट करने वाला मैं हूं, सबका जन्मदाता मैं हूं। तो कोई समझेगा कि अच्छा सब कुछ कृष्ण ने बनाया है, उनसे प्रकट हुआ है, चलाने वाला कोई और होगा तो कहते नहीं, मत सर्व प्रवर्तते, और मैं, मेरे से ही ये सब कुछ चलायमान होता है, सब कुछ मैं ही चला रहा हूं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान है इसका क्या प्रमाण, श्रीमद् भागवतम में नाग पत्नियां भगवान की स्तुति करती हुई कहती हैं कि हे प्रभु आप हैं इसका प्रमाण, इसका पता चलता है जगत में होने वाली विकृतियों से, जगत में जो विकृतियां होती हैं जैसे सूर्य सुबह में प्रातः काल में सूर्य निकलता है, फिर शाम को अस्त हो जाता है, फिर रात्रि में चंद्रमा निकलता है, फिर मौसम बदल जाता है, ऋतुएं बदल जाती हैं, फूल आना बदल जाते हैं, फल बदलते हैं, व्यक्ति बदलते हैं, हमारा चेहरा बदलता है, केस हमारे न चाहने पर भी सफेद होने लगते हैं, ऐसा ऐसा जो जगत में विकृतियां जो देखी जाती है, मतलब परिवर्तन देखा जाता है, इससे भगवान के होने का पता चलता है। जैसे कुछ एक्टिविटीज होती है, हम देखते हैं यहां पर एक बस जा रहा है, तो वो बस जा रहा है तो पता चलता है कि इस बस को चलाने वाला कोई है, कहीं कहीं रुक जाता है तो पता चलता है कि कोई ब्रेक मारा है, तो किसी गतिविधि को देखकर उसके संचालक का पता चलता है। इसी प्रकार इस संसार की गतिविधियों को देखकर इस संसार को चलाने वाले का पता चलता है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि नहीं कोई नहीं है, तो ये मूर्खता है, भगवान इसको कोई चलाने वाला है, अगर चलाने वाला नहीं है तो इतना सुचारू रूप से हैं? हम तो है ये संडे मंदिर आए हैं, आते संडे गायब रहेंगे, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ कि सूर्य गायब हो गया एक दिन? तो कितना सुचारू रूप से चलता है ये कार्यक्रम, तो इससे पता चलता है कि इसको कोई चलाने वाला है ना, हम जान सकते हैं। जो नास्तिक है नहीं मानते हैं उनको इस बात से जानना है। यहां तक कि आप सबको पता होगा हमारी ये वर्ली जो है, वर्ली नेहरू सेंटर है, उसमें वैज्ञानिक सेंटर है, उसमें एक प्रदर्शनी लगाई गई है, आप जाएंगे तो वहां देखने को मिलेगा, नेहरू सेंटर वैज्ञानिक सेंटर, उसमें एक प्रदर्शनी है, उसमें एक वैज्ञानिक थे, क्या नाम था, नहीं क्या नाम था प्रभु जी वो वैज्ञानिक का, मैं भूल रहा हूं, उस वैज्ञानिक ने वो प्रदर्शनी बनाई थी, मतलब अंदर आप जाएंगे तो हूबहु आकाश, उसमें तारामंडल, उसमें सूर्य, उसमें चंद्रमा, ये सब अंदर जाएंगे तो लगता है कि वो बिल्कुल न्यूट्रन, न्यूट्रन दो न्यूट्रन हुए, न्यूट्रन दो हुए, तो ये एक न्यूट्रन था वैज्ञानिक, तो उसने ये प्रदर्शनी बनाया और बनाकर सभी वैज्ञानिकों को इनवाइट किया कि आइए हाँ कुछ देखिए, तो सभी वैज्ञानिक आए और उसके अंदर जाकर देखा था, अरे वाह बहुत आजादी, फैंटास्टिक, एकदम हूबहू बनाया, और बाहर न्यूटन बैठा था तो उसको बोले वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर बनाया, तो वो न्यूटन कहने लगा नहीं मैंने नहीं बनाया, मतलब ये ऑटोमेटिक बन गया, तो सभी वैज्ञानिक पूछने लगे ऑटोमेटिक बन गया, ऐसा कैसे ऑटोमेटिक बन सकता है, आप क्या कहना चाहते हैं? तो बोला मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जब साधारण एक थोड़ा सा जो आप आकाशमंडल देख रहे हैं, ये आप समझते हैं कि ये ऑटोमेटिक नहीं बना और ऑटोमेटिक नहीं चल रहा है, तो जो वास्तविक ये जो आप पूरा भूमंडल है, आकाशमंडल है, ये आप कैसे कहते हैं ऑटोमेटिक बन गया? ये छोटा सा वस्तु जो डुप्लीकेट है और इतना है, वो अगर ऑटोमेटिक नहीं है और उसमें भी हम स्विच चालू करते हैं तो वो चंद्रमा और सूर्य और उसमें प्रकाश और वो सब चालू होता है कोई करता है तो, नहीं तो वो भी ठप हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा अंदर, तो इसको एक मामूली चीज को चलाने के लिए आप बोलते हैं नहीं नहीं कोई है, तो ये जो पूरा ब्रह्मांड में ये सब चल रहा है, तो आप लोग कैसे कहते हैं कि ये तो ऑटोमेटिक हो रहा है? तो कुछ लोग कहते हैं ये तो प्रकृति करता है, हैं? कुछ लोग हैं जो थोड़ा एक कदम आगे बढ़ते हैं तो वो क्या कहते हैं, ये तो प्रकृति के द्वारा होता है। प्रकृति क्या है भैया, ये क्या चीज है? तो गीता में भगवान इसका भी स्पष्टीकरण करते हैं, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत परिवर्तते, मया अध्यक्षेण, मेरी आंख के नीचे मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य करती है, और वैसे भी प्रकृति का अर्थ होता है नेचर, नेचर का अर्थ होता है स्वभाव, तो प्रकृति मतलब भगवान का स्वभाव, भगवान का स्वभाव, ये जगत को चलाते हैं, हवा देते हैं, सूर्य प्रकाश देते हैं। तो मया दक्षिण प्रकृति, जो लोग ये मानते हैं कि ये प्रकृति के द्वारा होता है, तो ये प्रकृति भी भगवान के अधीन है, कृष्ण के अधीन है। कृष्ण कहते हैं मया दक्षिण प्रकृति सूर्य। तो इस प्रकार कहने का अर्थ है, भगवान जो कहते हैं मत सर्व प्रवर्तते, ये मेरे के द्वारा संचालित होता है, मेरे द्वारा संचालित होता है, ये भगवत गीता में भगवान कहते हैं। तो इति मत्वा, इस जगत को बनाने वाले कृष्ण हैं और इस जगत को चलाने वाले कृष्ण हैं। इति मत्वा, इस प्रकार समझकर, इस प्रकार मानकर, भजन्ते माम, जो ऐसा जानते हैं मुझको, वो मेरा भजन करते हैं। कौन? बुद्धा भाव समन्विता, बुद्धा भाव, बुद्धिमान लोग, वो का लोग नहीं, बुद्धिमान लोग। बुद्धिमान लोग उनको कहा जाता है जिनको शास्त्र का ज्ञान है और प्रमाणिक परंपरा से, प्रमाणिक आचार्यों से जिन्होंने, जिनको ज्ञान मिला है, वो वास्तव में बुद्धिमान है। किसी बिना प्रमाण के, शास्त्र के बिना प्रमाण के किसी को भी स्वीकार कर लेना, ये बुद्धिमान व्यक्ति का काम नहीं है। जैसे आजकल हम देखते हैं कई भगवान हैं, गली गली में एक एक अलग अलग भगवान है, और कई प्रकार की साधनाएं हैं, कई प्रकार का बवंडर चल रहा है। अगर वो शास्त्र की बाउंड्री में है तो समझना चाहिए ठीक है, नहीं तो ये बुद्धिमानी का काम, आप बिना शास्त्र बिना किसी प्रमाण के। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो शास्त्र से, तो कभी कभी प्रश्न होता है कि शास्त्रों से भी कई कई प्रकार के भिन्न भिन्न मत मतांतर हैं, ऐसा भगवद गीता के विषय में भी है। जैसे हमारा जो सनातन धर्म है ये वेद मूलक धर्म है, इसको वैदिक धर्म भी कहते हैं, और वैदिक जो वेद जो है, अर्थात जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, इस पर कई विभिन्न ऋषियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से अपने भावों को व्यक्त करके भिन्न भिन्न प्रकार की व्याख्याएं की, जिसके कारण संसार में साध्य और साधन भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं। साध्य का अर्थ है मतलब जिसका हम साधना, भगवान जिसका हम साधना करते हैं, और साधना, ये दोनों भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है। तो ये मत मतांतर का कारण ये है कि कई ऋषि मुनियों ने विभिन्न प्रकार से वेद का व्याख्या किया है, और गीता का व्याख्या भी इसी प्रकार, कई ऋषि मुनियों ने, कई भक्तों ने, कई साधुओं ने, कई वक्ताओं ने भिन्न भिन्न प्रकार से गीता का व्याख्या किया। इसका एक उदाहरण देते हैं, ये उदाहरण बहुत उपयुक्त है, महात्मा लोग उदाहरण देते हैं, हमारे कई आचार्यों ने भी उदाहरण दिया है कि जैसे भिन्न भिन्न प्रकार की व्याख्याएं हैं वे इस प्रकार से हैं कि एक हस्ती और चार दृष्टिहीन का रूपक देते हैं। हस्ती कहते हैं हाथी को और दृष्टिहीन सूरदास, तो चार सूरदास थे और उनको हाथी के बारे में मत देने के लिए कहा गया। तो एक हाथी खड़ा किया था, तो हाथी के पास एक पहले सूरदास गए और जाकर देखा सूंड पकड़ लिया, आगे सूंड था, सूंड को पूरा हाथ घुमाया ऊपर से नीचे तक, और सूंड को हाथ घुमाने के बाद उसने अपना मत दिया कि हाथी जो है वो केले के वृक्ष जैसा है, ठीक है। फिर दूसरा व्यक्ति गए, दूसरे सूरदास गए, उन्होंने जाकर देखा तो उनका हाथ लगा उनके हाथी के पांव को और पूरे पांव को हाथ घुमाया चारों तरफ, और फिर वो आए और उन्होंने मत दिया कि हाथी जो है खंभे जैसा है। फिर तीसरे सूरदास गए और उन्होंने जाकर पूरे हाथी के पेट को हाथ घुमाया, ओ बहुत बड़ा पेट ऐसा, तो पूरा हाथ घुमाया, और फिर आकर उन्होंने भी अपना मत लिख दिया कि हाथी जो है वो दीवार जैसा है। फिर चौथे व्यक्ति गए तो उनको कहीं नहीं, हाथी के कान पकड़ में आ गए, तो कानों को पूरा पकड़ा और हाथ घुमाया और देखा आओ, और उन्होंने आकर अपना मत दिया, लिखा कि हाथी जो है वो सूप जैसा है। सूप समझते हैं, अब तो समझना मुश्किल हो गया, अब तो सूप के बदले सूपड़ी कहना पड़ता है, लेकिन सूप का अर्थ सूपड़ी नहीं है। आजकल तो माताएं भी नहीं जानती हैं, और जो विशेषकर बॉम्बे में और मीडियम इंग्लिश में पढ़ी उनके लिए तो बस सूपड़ा सूपड़ा, जिससे अन्न अन्न को साफ करते हैं। वो कबीरदास जी एक दोहा कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुपाए, अन्न अन्न बचाए रखे थोथा दे उड़ाए। ऐसा ज्ञान होना है, थोथा उड़ाए, वो सूपड़ा जो होता है ना अन्न साफ करने का, अब तो नहीं होता है। तो वो ये जो हाथी है वो सूपड़े जैसा है, उसका कान का दिया। तो इस प्रकार इन चारों ने चार प्रकार का मत दिया, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ये गलत है, लेकिन ये त्रुटिपूर्ण अधूरा है। तब एक दृष्टि वाला व्यक्ति गया और उसने हाथी को देखा और अपना मत दिया कि हाथी एक बहुत बड़ा प्राणी है, उसके दो आंखें भी हैं, उसका पांव भी है, उसका कान भी है, उसकी पूंछ भी है, उसका वो भी है, नाक भी है, वो खाता भी है, चलता भी है और आवाज भी करता है, ऐसा सब पूरा पूरा उसका व्याख्या किया। तो ये कौन है? तो भगवद गीता पर ये जो व्याख्या है वो प्रभुपाद जी का व्याख्या है। जैसे दृष्टि वाला व्यक्ति एक हाथी के बारे में ज्ञान दिया और दूसरे दूसरे लोग भी गीता के बारे में लिखे, तो वो बताया कि ये हाथी के अंग प्रत्यंग है। हो सकता है कई कई कोई गीता से ज्ञान के बारे में बताया, ज्ञान योग, बस ज्ञान ही सब कुछ है, ये एक अंग हो सकता है ज्ञान के बारे में, योग के बारे में, और भी जो गीता गीता से बताते हैं, तो ये एक एक अंग है। लेकिन गीता की पूर्णता जो है वो भक्ति है। भगवान ने भी उदार चित्त से इन सभी के मतों को समाहित किया है गीता में, लेकिन साथ साथ में गीता में भगवान ने अपने हृदय की बात भी कही है, और वो हृदय की बात है भक्ति। तो इस प्रकार नाना प्रकार के मत मतांतर हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने जो टीका दी है वास्तव में वो सर्वोपरि है, क्योंकि वो पूर्ण टीका है। और वो इसी प्रकार जैसे अर्जुन भगवान के भक्त हैं और भगवान के साक्ष्य, ऐसा हमने सुना है कि प्रभुपाद जी भी साक्ष्य भाव में, प्रभुपाद जी का भी भगवान के प्रति भाव वो साक्ष्य भाव है, ऐसा कुछ भक्तों का कहना है। तो ऐसे प्रमाणिक जो टीकाकार हैं उनकी टीकाएं पढ़कर व्यक्ति भगवद गीता को ठीक ठीक जान सकता है। इसलिए आप देखेंगे कि पूरे विश्व में प्रभुपाद जी की भगवद गीता को पढ़कर, उनकी टीकाओं को पढ़कर जितने लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, उतना और किसी की टीका को पढ़कर नहीं है। ये बिल्कुल परफेक्ट प्रमाण है। और इसलिए भक्तों को शायद बुरा लगेगा, लेकिन ये ताली बजाना नहीं, हरि बोल कह सकते हैं। ताली बजाने पर ताली तो नहीं बजाया जाता, लेकिन खैर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं तो ताली बजाते हैं, राजा हरि बोल प्रसन्नता से व्यक्त किया जाता है। तो प्रभुपाद जी की, और आज भी प्रभुपाद के द्वारा अनुवादित जो भगवद गीता है वो सबसे ज्यादा प्रचलित है, ज्यादा वितरण डिमांड है उसका, वितरण होती है, करोड़ों गीताएं वितरण होती है सभी भाषाओं में, और प्रभुपाद जी भी इसके लिए बहुत जोर दिए। तो ये जो मैराथन का महीना है इसके लिए सर्वप्रथम हमको भगवद गीता पर, जैसा मैंने चर्चा किया, थोड़ा जानना चाहिए, और इस पूरे मैराथन में गीता का वितरण करना चाहिए। अब गीता वितरण पर प्रभुपाद जी के मत को हम देखते हैं, या जैसे अर्जुन को भगवान ने चुना क्योंकि अर्जुन भक्त थे, अर्जुन कैसे भक्त थे, कितने महान थे, ये थोड़ा प्रसंग के द्वारा आप समझ सकते हैं, अर्जुन के आचरण द्वारा। कि जब महाभारत का युद्ध पक्का हो गया तब दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान के पास सहायता मांगने के लिए द्वारिका में गए थे। उस समय द्वारकाधीश शयन कर रहे थे, सोए हुए थे। तो दुर्योधन गया और दुर्योधन जाकर भगवान के सिरहाने की तरफ बैठ गया। और फिर अर्जुन गए, तो अर्जुन गए और अर्जुन जाकर भगवान के चरणों की चरणों में बैठ गए। रात को हमारा काउंसिल चल रहा था, उसमें कई भक्त इस भक्त के आचरण पर चर्चा कर रहे थे। उसमें भगवद गीता का एक श्लोक लिया गया था, स्थित प्रगश्य का भाषा और किम आसित, ऐसे सब अर्जुन पूछता है कि जो भगवान के भक्त हैं वो बोलता कैसे है, वो बैठता कैसे है, ये याद आ गया। वो पूछता है कि वो भगवान के भक्त बैठते कैसे हैं, तो प्रश्न होता है कि ये बैठने का क्यों पूछ रहे हैं। अब देखिए, दो लोग गए हैं और दोनों जाकर बैठ गए। दुर्योधन गया तो भगवान का जो सिर था उधर जाकर सिर पे बैठ गया, मतलब सिर की तरफ बैठ गया, और अर्जुन गया तो भगवान की चरण की तरफ बैठ गया। तो किम आसित, भगवान के भक्त कैसे बैठते हैं, कैसे चरण की तरफ बैठ गए। वैसे आप देखेंगे तो दोनों भगवान के संबंधी थे, अर्जुन भी भगवान का संबंधी है, दुर्योधन भी भगवान के संबंधी है, और इस हेतु से वो सहायता मांगने गए थे। दुर्योधन जो है, वो दुर्योधन की पुत्री जो लक्ष्मणा थी, उसका विवाह कृष्ण के पुत्र सांब के साथ हुआ था, तो इस प्रकार दुर्योधन भी भगवान का नाती है, और अर्जुन वैसे भगवान के बुआ के लड़के हैं, प्रथा के पुत्र हैं, और लेकिन साथ साथ में अर्जुन कृष्ण के बहनोई भी हैं, मतलब जमाई राज हैं, सुभद्रा जी के पति, तो जमाई तो और ऊपर बैठ सकता है, लेकिन अर्जुन तो चरण की तरफ बैठे थे। और इसका परिणाम क्या हुआ, जैसे भगवान उठे तो भगवान का दृष्टि अर्जुन पर पड़ा, दुर्योधन पर नहीं पड़ा। तो भगवान ने फिर पूछा अर्जुन से, ओ अर्जुन कैसे हो, कब आए, क्या। तो दुर्योधन पीछे से बोला, अरे द्वारकाधीश मैं भी आया हूं। तो भगवान ने मुड़ कर देखा, ओ अच्छा आइए आइए, आपका स्वागत है। फिर अपना अपना प्रस्ताव रखा कि हम युद्ध है तो आपकी सहायता के लिए आए हैं। तो भगवान ने पहले साफ साफ कर दिया कि आप दोनों हमारे संबंधी हैं और युद्ध जो है वो भाई भाइयों के बीच में है, तो मैं इसमें युद्ध में भाग नहीं लूंगा, किसी को मार काट नहीं करूंगा, मतलब शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और एक तरफ मैं और एक तरफ मेरी यादव सेना जो है, नारायणी सेना, जो उस समय पृथ्वी की अजय सेना मानी जाती थी, सबसे शक्तिशाली सेना मानी जाती थी यादवों की सेना, नारायणी सेना। तो एक पक्ष में मेरी पूरी नारायणी सेना रहेगी, वो युद्ध करेगी, और जो अजय सेना है, और एक तरफ मैं रहूंगा और मैं युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र अस्त्र कुछ नहीं उठाऊंगा। अब दुर्योधन चिंता में पड़ गया कि अब क्या, अभी ये तो इसको तो मांगने का भी प्रश्न ही नहीं, इसको निहत्था, इसको मांग कर क्या करेंगे, अब मुझे सेना चाहिए। लेकिन अब भगवान ने ऐसा किया कि चॉइस के लिए पहले अर्जुन को कहा, भगवान ने नीति से बात किया, क्योंकि मेरी पहली दृष्टि भी अर्जुन पर पड़ी है और अर्जुन आयु में दुर्योधन तुमसे छोटे हैं, तो पहले जो मांगने का अधिकार है वो छोटे का है। तो दुर्योधन चिंता में था कि कहीं सेना मांग ली तो मैं इस निहत्थे को क्या करूंगा, तो वो प्रार्थना कर रहा था कि अरे अर्जुन ऐसा ना मांगे, अर्जुन ऐसा ना, ऐसा मन में संकोच। तो जैसे ही भगवान ने चॉइस करने के लिए अर्जुन से कहा, तो अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपको चयन करता, इसको भक्त कहते हैं। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वे भगवान से कुछ नहीं चाहते हैं, वे भगवान को चाहते हैं। भगवान से कुछ मांगना घाटे का सौदा है, भगवान से भगवान को मांगने वाला ही बुद्धिमान है। भगवान से हम भगवान की थोड़ी वस्तु मांग लेंगे, वो वस्तु का जो अहम सर्वस्व प्रभाव, ये सब कुछ मेरा ही है, उस मालिक को ही मांग लें, फिर क्या कमी रहेगा, क्या कमी रहेगा। तो जो भगवान से कुछ कुछ मांगते हैं वो घाटे में रहते हैं, वास्तव में वो कम बुद्धिमान है। भगवान से भगवान को ही मांग लेना चाहिए। अर्जुन ने भगवान को ही मांग लिया तो फायदे में कौन रहा? भगवान को मांग लिया तो भी राज्य तो उसी समय अर्जुन तो राज्य मिल गया अभी क्या। तो इस प्रकार युद्ध निश्चित हो गया। युद्ध निश्चित होने के बाद अब उनको दुर्योधन को जो चाहिए तो मिल गया। दुर्योधन प्रसन्न हो गया, अर्जुन भी प्रसन्न हो गया और इस प्रकार फिर चले गए। अब जब युद्ध निश्चित हो गया तो धृतराष्ट्र थोड़े चिंता में थे और उस समय वेदव्यास महाराज धृतराष्ट्र के भवन में आए। धृतराष्ट्र को जब चिंता में देखा, जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय, गौर निताई की जय। तो धृतराष्ट्र से कहा कि महाराज आप चिंता में क्यों हैं? आप चिंता शोक मत कीजिए, कृष्ण की इच्छा से कुछ लोगों का अब काल निकट आ गया है, तो भगवान की इच्छा से आप शोक छोड़ दीजिए। अब युद्ध होगा और कृष्ण की इच्छा से कुछ लोगों का काल अब निकट है, शोक छोड़िए छोड़िए। अगर आप चाहते हैं कि इस युद्ध को देखना चाहते हैं तो मैं आपको दृष्टि प्रदान कर सकता हूं कि आप युद्ध देख सकते हैं। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि नहीं नहीं भाई, भाइयों की मार काट मैं अपनी आंखों से देखना नहीं चाहता हूं। अगर आप, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं इस पूरे कमेंट्री को सुनना चाहता हूं, वृतांत को सुनने की इच्छा है, आप कुछ ऐसी कृपा कीजिए। तब वेदव्यास महाराज ने धृतराष्ट्र के सारथी भगवान के भक्त इच्छा और द्वेष से रहित श्री संजय को अपना दिव्य दृष्टि प्रदान किया और धृतराष्ट्र से कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं जिससे कुरुक्षेत्र में होने वाले सारे वृतांत को ये यहां बैठे बैठे आपको सुनाएंगे। इस प्रकार वेदव्यास महाराज दिव्य दृष्टि संजय को प्रदान करके वहां से चले गए। तब जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ है और प्रारंभ होने के पश्चात ये महाभारत के भीष्म पर्व के 25वें अध्याय में भगवद गीता का व्याख्यान आता है और उस समय धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र संवेता युयुत्सव माम का पांडवा चैव किम कुर्वत संजय, ये प्रश्न किया। ये असंगत प्रश्न है, संगत प्रश्न नहीं था कि वहां कुरुक्षेत्र में जो धर्म का क्षेत्र है मेरे और पांडव माम का पांडवा चाहिए, यहां पर ही भेद दिखाई देता है। वो दोनों इकट्ठा होकर उन्होंने क्या किया? तो धृतराष्ट्र के मन में भी संशय था, इसलिए अब वहां युद्ध के लिए इकट्ठा हुए हैं, युद्ध करेंगे, क्या किया का प्रश्न ही नहीं उठता है। वहां कोई सत्संग तो होने वाला नहीं है, हालांकि हुआ, लेकिन क्या किया तब उसका उत्तर देते हुए ये भगवद गीता का प्रारंभ करते हैं संजय। तो इस भगवद गीता का जहां प्रारंभ होता है, यहां हम देखते हैं कि अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान ने इस दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। अर्जुन को पहले मोह हुआ, मोह के कारण शोक हुआ और उस मोह और शोक में, अर्जुन का मोह और शोक, मोह क्यों होता है? अज्ञान के कारण। तो इस अज्ञान को दूर करने के लिए भगवान ने गीता का उपदेश दिया। लेकिन प्रश्न होता है कि क्या अर्जुन मोह में थे? क्या अर्जुन शोक में थे? जो भगवान के कंधे पर हाथ रखकर चलते हैं, जो भगवान के साथ खेलते हैं, भगवान के साथ सोते हैं, वो क्या अज्ञान में है? वो मोह में है? तो बात ऐसी नहीं है। लेकिन भगवान जो भी लीला करते हैं अपने भक्तों के साथ करते हैं, भक्तों को माध्यम बनाकर कुछ भी इस जगत को उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं। तो इस प्रकार अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान ने इस सारे जगत के कल्याण के लिए, मंगल के लिए इस दिव्य ज्ञान की शिक्षा प्रदान की। अर्जुन माध्यम है, या भगवान का यह स्वभाव है, भगवान कोई भी लीला अपने भक्तों के साथ करते हैं। कोई भी लीला देखिए, कभी 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 कौन सी लीला किस भक्त के साथ वो करना चाहते हैं वो रोल भक्त प्रस्तुत करता है। जैसे हम देखते हैं कि रावण और कुंभकर्ण, हिरणाक्ष हिरणाकश्यपु या शिशुपाल दत्तवक्र, इनके साथ भगवान की लीला है तो शत्रु हैं, ये शत्रु बने हुए हैं। लेकिन अगर वास्तव में तत्व दर्शन से देखेंगे तो ये भगवान के शत्रु नहीं है, ये तो भगवान के महान भक्त जय विजय है। लेकिन भगवान की ये शत्रुता की लीला भी है तो वो भी भक्तों के साथ, और भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए ये लीला करने के लिए स्वीकार होते हैं, ये पात्र स्वीकार करते हैं। तो ये जो शत्रु भाव प्रस्तुत है ये इनका भाव शत्रु का है, ये भगवान के शत्रु नहीं है, जानना चाहिए इस बात को। शिशुपाल और दत्तवक्र हैं या हिरणाक्ष हिरणाकश्यपु ये रावण कुंभकर्ण, इनके अंदर शत्रु का भाव है भगवान के प्रति, ये शत्रु नहीं है। ऐसे ही जैसे राधा जी और गोपियों के साथ जो भगवान का लीला है, तो इस लीला में गोपियों का और राधा जी का परकिया भाव है, परकिया नहीं है। हम ये नहीं समझते हैं इसलिए गड़बड़ वाला कोई कोई लोग व्याख्या करते हैं, ये परकिया नहीं है, ये राधा जी कोई पराई नहीं है, गोपियां पराई नहीं है, भाव पराया परकिया है ना, भाव प्रक्रिया है। क्योंकि भगवान प्रक्रिया भाव का स्वादन करना चाहते हैं इसलिए वो प्रक्रिया भाव में लीला है, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की संतुष्टि के लिए इस प्रकार की भक्त लीला करते हैं। और भगवान अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं और उसी लीला भक्तों के साथ की गई लीला से ही उसका हम श्रवण करके इस जगत के जीवों का उद्धार हो सकता है ना। जो भी भगवान ने अपने भक्तों के साथ लीलाएं की इस लीला का जब हम श्रवण करते हैं तब जगत के जीवों का भगवान के प्रति आकर्षण या भगवान इस संसार के जीवों का अज्ञान दूर होता है। तो ये जो भगवद गीता है ये भी भगवान की एक लीला है अर्जुन के साथ। तो अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान ने इस जगत के जीवों के कल्याण के लिए इस भगवद गीता का शिक्षा दिव्य ज्ञान को प्रदान किया। अब इस दिव्य ज्ञान की मानव समाज में बहुत आवश्यकता है, अतएव हमारे सभी आचार्य इसके लिए हमको जोर देते हैं, हैं? सभी आचार्यों ने कि इन जो गीता है या जो ये प्रभुपाद जी के द्वारा लिखे हुए शास्त्र हैं उनका आप वितरण कीजिए, क्योंकि समाज को इसकी बहुत आवश्यकता है। अब वितरण पर हमारे आचार्य किस किस प्रकार के ये गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन का ये जो प्रचार का विषय है इसको अगर हम चर्चा करेंगे तो देखिए 1896 ये वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है। क्या है इस वर्ष की महत्वता? प्रभुपाद जी का आविर्भाव हुआ था। इससे भी एक महत्वपूर्ण बात और है कि हमारे आचार्य सातवें गोस्वामी जिनको कहा जाता है भक्ति विनोद ठाकुर ने ये सब भगवद गीता और इन सब शास्त्रों की टीकाएं लिखी थी, और इन सब की टीका लिखकर 1896 में ही इन टीकाओं को इन शास्त्रों को यूरोपीय देशों में, यूरोप में, जर्मन में, लंदन में इनको इन्होंने भेजा था 1896 में। भक्ति विनोद ठाकुर ने ये भेजा था विदेशों में, ये बुकों का सर्वत्र वितरण होना चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से भी प्रभुपाद जी मिले, तो प्रभुपाद जी को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का विशेष जो आदेश था वो ये था, दो आदेश था कि पहला आदेश कि विदेशी भाषाओं में तुम अंग्रेजी भाषा में आप इस शिक्षाओं का बार शिक्षा प्रदान कीजिए, प्रचार करो। और इससे भी ज्यादा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद जी को कहा था कि तुम्हारे हाथ में कृष्ण जब भी धन दें तो तुम सर्वप्रथम बुक छपाई करके इनका वितरण करोगे शास्त्रों का। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का स्पेशल प्रभुपाद जी को ऑर्डर था, इसलिए प्रभुपाद जी ने भी इस पर विशेष जोर दिया। क्यों इसकी आवश्यकता है? परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अपने एक लेक्चर में बताते हैं कि इस जगत के जीव दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि अज्ञान में हैं और वे वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई इस्कॉन का भक्त आए और हमको कोई बुक दे जिसको पढ़कर हम हमारा अज्ञान दूर करें। ये स्पष्ट शब्द हैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, अभी हम सुन रहे थे उनका लेक्चर, तो उनमें उन्होंने बताया कि लोग वेट कर रहे हैं, हमको जाना है घर घर और उनको ये बुक देकर उनका उद्धार करना है। इस पर प्रभुपाद जी और एक विदेशी भक्त का बहुत सुंदर वार्तालाप था, रामेश्वर प्रभु करके प्रभुपाद जी के शिष्य थे, तो अमेरिका में वे प्रभुपाद जी से कहते हैं कि प्रभुपाद मायापुर से संदेश आया है जिसमें गोपाल कृष्णा ने भी संदेश भेजा है कि हम मायापुर फेस्टिवल करना चाहते हैं और मायापुर में गेस्ट हाउस बनाना चाहते हैं, इसलिए हमको कम से कम $160 की आवश्यकता है, गेस्ट हाउस बनाना है लेकिन इसके पहले एक फेस्टिवल करना है, तो आप हमको $160 भेजिए। तो प्रभुपाद जी से रामेश्वर प्रभु ने पूछा कि प्रभुपाद क्या हम ये भेज सकते हैं? तो बोला कहाँ से? बोला और तो कहीं नहीं लेकिन बीबीटी में पैसा है तो बीबीटी से वो उधार मांग रहे हैं। बीबीटी के बारे में भी आपको जानना चाहिए, बीबीटी भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। प्रभुपाद इस्कॉन में इस्कॉन के अलावा किसी भी ट्रस्ट को मान्यता नहीं देते। प्रभुपाद जी ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया, इसको मान्यता नहीं दी कि इस्कॉन में रहते हुए कोई व्यक्ति इस्कॉन से अलग कुछ करे, इसको प्रभुपाद एक्सेप्ट नहीं किए। लेकिन फिर भी प्रभुपाद स्वयं ने इस्कॉन से अलग एक ट्रस्ट खोला, ये बीबीटी, ये इस्कॉन से थोड़ा अलग ट्रस्ट है, स्वतंत्र ट्रस्ट, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट बीबीटी खोला। इसके पीछे ये बहुत बड़ा प्रभुपाद जी का दिव्य दृष्टि है, दूरदृष्टि है, इसमें प्रभुपाद जी की दूरदृष्टि है बहुत कि कलयुग आ रहा है, आने वाले समय में लोग धर्म से दूर होते जाएंगे, कई प्रकार के शासक आएंगे, कई प्रकार की सरकारें आएंगी और ये भी हो सकता है कि मंदिरों को भी क्षति पहुंचाई जा सकती है, जैसा पूर्व इतिहास में भी हुआ, अलग अलग साम्राज्यों में अलग अलग ने मंदिरों पर भी आक्रमण किए, तो ऐसा आगे भी हो सकता है। तो मंदिरों को कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, ये प्रभुपाद जी दिव्य दृष्टि से देखते हैं। लेकिन बीबीटी एक अलग ट्रस्ट ऐसा है कि बुक ट्रस्ट है, इस पर ना कोई सरकार कुछ कर सकती है और ना कोई आपत्ति आ सकती है, ये बुक ट्रस्ट है जिसका में ज्ञान की बुकों का छपाई होता है। आप पूर्व इतिहास में भी देखेंगे तो ऐसे जैसे गीता प्रेस गोरखपुर है या अन्य बुक, तो भले मुगल साम्राज्य आया लेकिन उन्होंने भी वहां कुछ नहीं किया, किसी राजा ने या किसी ने उस पर कोई क्षति नहीं, तो भाई ये तो ज्ञान वितरण करते हैं, चलो कोई बात नहीं, ज्ञान का विस्तार हो रहा है। तो ये सोचकर प्रभुपाद जी ने इस्कॉन से एक अलग बीबीटी ट्रस्ट स्थापना की, जिससे भविष्य में कुछ भी हो जाए, मंदिर चले नहीं चले कुछ भी हो, लेकिन बीबीटी इन बुकों के द्वारा, जो मैंने लिखी बुक लिखी है, इसके द्वारा हमेशा इस्कॉन जीवित रहेगा। या प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरी पुस्तकों में मैं हमेशा जीवित रहूंगा, तो इसलिए बीबीटी का अलग से स्थापना प्रभुपाद जी ने की। तो कितना महत्व देते हैं बुक वितरण पर और इस ज्ञान की समाज में कितनी आवश्यकता है, इस पर प्रभुपाद जी जोर देते हैं। तब प्रभुपाद जी ने महाराज ने और मायापुर के भक्तों ने प्रभुपाद जी से बीबीटी से कुछ उधार मांगा। प्रभुपाद जी ने कहा कि ये कब चुकता कब करेंगे, कैसे चुकता करेंगे? तो बोला ये कह रहे हैं 3 महीने में चुकता कर देंगे। तो प्रभुपाद जी ने कह दिया मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप अगर आपको लगे है तो भेज सकते हैं। तब तक रामेश्वर प्रभु ने कहा नहीं प्रभुपाद, एक प्रॉब्लम है, हम 3-4 महीने तक तो किसी को कुछ भी पैसा नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी बुक छपाई जो है उसमें पैसों की बहुत आवश्यकता है। तब प्रभुपाद ने कहा यार बुक छपाई जो है वो पहले बुक छपाई का काम को कोई अड़चन नहीं होना चाहिए, बुक छपाई यथारूप चलना चाहिए, फास्ट बुकों की छपाई और बुकों का वितरण इसको पहले महत्वता हम देंगे, बाद में मंदिर बनना है बने, गेस्ट हाउस बनना है बने, कुछ भी होना हो, बुक छपना हमेशा चालू रहना चाहिए। ये बृहद मृदंग है प्रभु जी बताए, इसको बृहद मृदंगा मतलब उस मृदंग को बजाएंगे पूरा विश्व सुन सकता है, बृहद मृदंगा। और वास्तव में इस मृदंग को पूरे विश्व ने सुना, पूरे विश्व में इसका आवाज गया। एक जगह पर जो भगवत गीता का टीका बहुत सुंदर लिखते हैं दिल्ली के भक्त गीता मित्र दास, बहुत सुंदर लिखा एक जगह पर कि अर्जुन को भगवान ने कहा युद्ध करो, तो भगवान के कहने पर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुए। तो अर्जुन बाण दाग रहे थे, तो वहां पर टीका में गीता मित्र दास लिखते हैं कि हमारा भी जो ये आंदोलन है ये भी माया के साथ युद्ध है, और प्रभुपाद जी कहते हैं इस युद्ध में एटम बम डालो, प्रभुपाद के जो बुक है वो एटम बम है, टाइम बम है, सॉरी ये टाइम बम है। तो भक्त लोग इस युद्ध जो कर रहे हैं माया से, तो इस युद्ध में भक्त लोग जाकर ये टाइम बम डालते हैं और इस प्रकार माया को प्राप्त करते हैं। तो ये भी भक्तों का ये भी ये सेना है, प्रभुपाद जी की सेना है, और प्रभुपाद जी भी आदेश दे रहे हैं कि युद्ध करो और इस युद्ध में इस टाइम बॉम्बों को डालो। तो ये प्रभुपाद जी के जो पुस्तक है ये क्या है, टाइम बॉम्ब। ये कब किस समय, कभी कभी हम लोग जाते हैं वितरण करने तो कोई, हम तो नहीं पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, कोई अगर आपको कहता है कि हम तो गीता को नहीं पढ़ते ऐसे ही रख ले, जान लेना चाहिए भगवत गीता है, ये कोई साधारण बुक नहीं है। भगवत गीता के बारे में स्वयं भगवान लक्ष्मी जी से बताते हैं कि ये भगवत गीता क्या है। पहले भगवत गीता का अर्थ भगवत मतलब ये इस पर लिखा गया श्रीमद्, हमारे दो शास्त्र हैं भागवतम और भगवत गीता, इस पर श्रीमद् लिखा जाता है। वर्तमान समय में तो कुछ लोग अब दूसरे शास्त्रों में भी लिखने लगे हैं लेकिन वो प्रमाणिक नहीं है। श्रीमद्, श्रीमद् का अर्थ होता है भगवान की शक्ति से या आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण, और भगवत मतलब भगवान के द्वारा, गीता मतलब गीत, भगवान के द्वारा गाया हुआ ये गीत है इसलिए इसको, और आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण है इसलिए इसको श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। अब भगवत गीता वास्तव में कुछ लोग कहते नहीं नहीं ऐसा ही घर में रखेंगे तो क्या, लेकिन भगवत गीता ये कोई साधारण बुक नहीं है। भगवत गीता क्या है तो लक्ष्मी जी की जिज्ञासा पर भगवान भगवत गीता की व्याख्या करते हैं, कहते हैं सुनु सुश्रोणी गीतासु स्थित आत्मनि, सुनु सुश्रेणी हे सुंदरी, हे सुंदरी सुनो भगवत गीता, भगवत गीता पूरा मेरा स्वरूप है, स्थित आत्मनि मैं उसमें किस प्रकार स्थित हूं सुनो। कहते हैं पत्राणी पंच जानी, भगवत गीता में 18 अध्याय है, उसमें जो 5 अध्याय हैं वे वक्त्राणी वो मेरा मुखमंडल है। वक्त्राणी पंच जानी 5 अध्यायों को मेरा मुखमंडल समझो, और पंच अध्याय अनुक्रमात दश अध्याय भुजो, 5 अध्यायों को मुख समझो, तो 5 मुख हैं तो उसके 10 हाथ हुए है ना, रावण के 10 मुख थे तो 20 हाथ थे, इसे रावण का वध करने के लिए भगवान राम ने अंत में 31 बाण छोड़े थे है ना, 10 मस्तक 20 भुजाएं और 1 नाभि, तब उसका वध हुआ। तो यहां पर कहते हैं पंच मुख, पांच अध्याय मेरे पांच मुख हैं। तो पांच मुख हैं तो दस हाथ हैं, और पांच अध्याय पांच मुख हैं तो दस अध्याय भगवान बोलते हैं मेरी दस भुजाएं हैं, कितने हुए 15। और फिर कहते हैं एको उदरम, एक अध्याय है मेरा उदर, मेरा पेट है, और द्विपदाम्बुजो, और दो अध्याय मेरे चरण कमल है, 18 हो गए, 5, 10, 15, 2, 17 और 1। इस प्रकार ये जो पूरा एकादश अध्यायी वाड़मयी मूर्ति से मूर्तेश्वरी, ये 18 अध्याय वाली जो भगवत गीता है वो मेरी वाड़मय मूर्ति है, भगवान साक्षात मूर्ति है। अरे इसको छूने से भी लाभ होता है, इसको कोई छू ले, हम उदाहरण देते थे भूगर्भ प्रभु और हम चर्चा कर रहे थे कि भगवत गीता तो कोई नहीं नहीं हाथ नहीं देंगे। मैं बोला ट्रेनों में विज्ञापन आता है, किसी अज्ञान वस्तु दिखे तो उसको छूए मत। तो मैं बोला वो ऐसा क्यों बोलते हैं छूए मत, वो ऐसा इसलिए बोलते हैं कि अगर आप छुएंगे तो उसके अंदर जो है उसका प्रभाव पड़ेगा आप पर, उसके अंदर बॉम है तो आपको वो उसका प्रभाव आप पर आ जाएगा, इसलिए छूए मत। तो उनको बोलिए कि ये भी है इसको छूए, इसके अंदर जो है उसका प्रभाव पड़ेगा आप पर, इसको छूए, इस प्रकार इसको छूना चाहिए। तो छूने से भी पाप नष्ट होता है भगवत गीता। और फिर कोई घर में रखे, कोई उसका पूजा करते हैं, बहुत से लोग बहुत उचित है उसका पूजा करते हैं, कोई कोई लोग तो भगवत गीता को इस प्रकार रखते थे मखमल में और उसको बहुत अच्छे पात्र में डब्बे में और अच्छा कपड़ा लपेट कर, और ऐसा कई उदाहरण मिलते हैं। एक व्यक्ति को भगवत गीता देखा तो एक डब्बा चांदी का डब्बा खोला तो अंदर एक सोने का डब्बा खोला तो एक मखमल, और मखमल को खोला तो अंदर भगवत गीता, इस प्रकार से भगवत गीता को रखता है और बहुत ही सुरक्षित, मतलब इतना सम्मान भगवत गीता को दिया जाता है क्योंकि ये भगवत गीता जो है साक्षात भगवान की वाड़मय मूर्ति है। तो इसको छूने में भी लाभ है और इसको घर में रखने में भी लाभ है। फिर पढ़ने की तो बात ही छोड़ो, एक बार कोई भी छूकर इसको पढ़ लेता है वास्तव में उसका तो उद्धार होना निश्चित है। और बताइए आपकी भगवत गीता, एक भगवत गीता घर में रखने से पूरा परिवार उसका लाभ उठा सकता है। आप नहीं पढ़ सकते, आपका पत्नी पढ़ सकता है, आपका बेटा पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन होगा तो पढ़ेगा ना, घर में होगा ही नहीं तो। कई ऐसे उदाहरण हैं जो 10-10 साल तक वो गीता यथारूप रही, लेकिन 10 साल बाद किसी उसके लड़के ने या किसी टेंशन में आया तो लेकर बैठा और पढ़ा और वो बहुत अच्छा भक्त बन गया। तो ये टाइम बॉम्ब है, कौन से टाइम पर ये इसका प्रभाव डालेगा इसका कोई कहा नहीं जा सकता। इसलिए इसको घर में रखिए, इसको गिफ्ट के रूप में आप दे सकते हैं, इसको कहीं भी कोई फेस्टिवल है कुछ उत्सव है तो उसमें भी आप दे सकते हैं, और घर में एक है तो दूसरा भी रखिए गिफ्ट के रूप में देने के लिए। भगवत गीता को घर में रखना भी मंगल है। फिर जब रखना मंगल है तो पढ़ना तो टाइम मिलेगा। तो इस प्रकार बहुत ही इस पर जोर दिया गया है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारी बुकों का वितरण होना चाहिए। इस प्रकार रामेश्वर प्रभु को कहा कि नहीं आप ये लोन उनको देना रोक दो, सारे कार्य रोको, लेकिन पुस्तक छपना और उसके वितरण का कार्य कभी नहीं रुकना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने तो यहां तक प्रभुपाद जी को डायरेक्शन दिया कि अगर पैसा न हो और बुक का काम रुक रहा है तो आप मंदिर से मार्बल उखाड़ कर बेच दो और उससे बुक छपाकर वितरण करो। तो इससे हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी भी कहते हैं इस बात को, प्रभुपाद जी की इन पुस्तकों को वितरण करना कितना महत्वपूर्ण कार्य है और समाज को इस समय इसकी बहुत आवश्यकता है। प्रभुपाद जी ने जो गीता का टीका लिखा है उसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि प्रभुपाद जी ने अपना मत नहीं दिया, प्रभुपाद जी ने वो मत दिया जो भगवान का मत है। उस मत को प्रस्तुत किया है। कई कई टीकाकार हैं, उन्होंने टीकाएं लिखी हैं, उन्होंने अपना मत दिया है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपने मत में कई दोष हो सकते हैं, अपना मत त्रुटिपूर्ण हो सकता है, लेकिन भगवान का मत जो है वो पूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद जी जो भगवान बताते हैं, भगवान क्या बताना चाहते हैं उसी को ये सब। इसलिए विद्वानों ने ये जो यथारूप कहा गया है, ये यथारूप को प्रभुपाद जी ने अपनी मर्जी से नहीं लिखा। आप भगवद गीता खोलेंगे तो अंदर कई विश्व के धार्मिक अध्ययन करने वालों का सूची है, फिलोसॉफर जो कहते हैं, जो विश्व के धार्मिक अध्ययनों को अध्ययन करते हैं और उस पर अपना मत देते हैं। तो ऐसे मत भगवद गीता में कई फिलोसॉफरों का है। ऐसे जो धार्मिक अध्ययन करने वाले विश्व के बड़े बड़े फिलोसॉफर हैं, उन्होंने प्रभुपाद जी के इस तात्पर्य को पढ़कर उन्होंने ये टाइटल प्रदान किया कि ये जो टीका लिखा गया है वास्तव में ये यथारूप है। यथारूप का अर्थ है कि जो कृष्ण चाहते हैं वही प्रभुपाद जी ने टीका लिखा है अपना मत में, और इसलिए इस टीकाओं का बहुत प्रभाव है। कई उदाहरण अभी इस समय हमारे पास नहीं कि कई गीताओं को पढ़कर ऐसे बिल्कुल ज्ञान व्यक्ति भक्त बन गए, एड्रेस ढूंढकर मंदिरों में आए, कि कई उदाहरण ऐसे प्राप्त होते हैं। तो आज के इस प्रसंग पर, भगवद गीता मैराथन के प्रसंग पर, आप सभी भक्तों के चरणों में यही विनती है, और प्रभुपाद भी कहते हैं कि जो भी अपने आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है, जो भी हमारे कृपा का पात्र बनना चाहता है, वो हमारे बुकों का वितरण करें। स्वयं भगवान भी 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में कहते हैं कि जो मेरे इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाता है, दूसरों को देता है, वो मुझे अति प्रिय है, और वो शरीर छोड़ने के बाद मेरे धाम को प्राप्त करेगा असंशय, इसमें कोई संशय नहीं करना। तो इस प्रकार हमको ज्यादा से ज्यादा इस मैराथन में प्रभुपाद के बुकों का वितरण करना चाहिए, और प्रभुपाद जी के कृपा पात्र, भगवान के कृपा पात्र बनना चाहिए। साथ साथ में भक्त जो बड़े दयालु होते हैं, दूसरे जीवों के प्रति दया हृदय में रखते हुए बुकों का वितरण करना चाहिए। इसी निवेदन के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूँ, और आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए, उपस्थित हुए, और मैं जान रहा हूँ कि आप सभी इसमें निश्चित उत्साह से भाग लेंगे और प्रभुपाद जी के कृपा पात्र बनेंगे और संसार के जीवों पर निश्चित अपनी दया दिखाएंगे।
प्रश्न है, भगवद गीता कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ने कही अर्जुन को, उसके पहले भगवद गीता थी, और दूसरा प्रश्न है भगवद गीता अर्जुन ने कही तो भगवान को लिखने की क्या जरूरत।
प्रभु जी का प्रश्न है एक कि इसके पहले थी, इस बात का उत्तर भगवान स्वयं 4वें अध्याय में देते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तिम राज ऋषयो विदुः। हे अर्जुन, ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ये मैं आज तुमको दे रहा हूं ऐसा नहीं है। करोड़ों वर्ष पूर्व या सृष्टि के प्रारंभ में इस भगवत गीता के ज्ञान को मैंने सूर्य देव विवास्वान को दिया था, और उन्होंने अपने इसी ज्ञान को मनु महाराज को दिया, मनु महाराज ने इसी ज्ञान को इश्वाकु को दिया। इस प्रकार सूर्य वंश का ये जो वंश है, सूर्य वंश से ये परंपरा, तो इन राजाओं को ये ज्ञान एवं परंपरा प्राप्ति राज ऋषियों विधि, इस प्रकार ये जो ज्ञान है राज ऋषियों के द्वारा आ रहा था, लेकिन समय के प्रभाव में ये लुप्त होने के कारण मैं इसे तुम्हें पुनः प्रदान कर रहा हूं। ये चौथे ज्ञान है एक प्रश्न। तो ये भगवद गीता तो पहले जो ज्ञान है, दूसरा प्रश्न है अर्जुन को भगवान ने जो ज्ञान दिया, तो प्रभुपाद जी ने कोई गीता नया नहीं लिखा, लेकिन प्रभुपाद जी ने इस पर टीका लिखा। प्रभुपाद जी ने टीका लिखा, जरूरत इसलिए है कि संस्कृत और ये जो भगवान के जो संस्कृत के शब्द हैं, वास्तव में कई आचार्यों ने लिखा, प्रभुपाद जी ने अकेले ने लिखा ऐसा नहीं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो कई टीकाकारों ने, ये बात हो चुका पहले, कई टीकाकारों ने लिखा, तो ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि वो मूर्ख थे, लेकिन उन्होंने पूर्णतया भगवान के मत को प्रस्तुत नहीं किया, अपना अपना मत देकर इसको छिन्न भिन्न कर दिया। अतः प्रभुपाद जी ने भगवत गीता को यथारूप भगवान क्या चाहते हैं उस रूप में प्रस्तुत किया। तो इसके पहले भी हमारे आचार्यों ने भी टीका, श्रीधर स्वामी की टीका है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है, उन टीकाओं को समन्वित करके ही प्रभुपाद जी ने अपना टीका दिया। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी ने अलग मत किया, लेकिन देश काल और स्थिति को देखते हुए इस समय के लोग इस ज्ञान को किस प्रकार एक्सेप्ट कर सकते हैं, किस प्रकार डाइजेस्ट कर सकते हैं। जैसे कोई फल है, वो कठोर फल है तो दांत वाला होता है, तो उसको बोलेंगे तो बोला नहीं मेरे तो दांत नहीं है, कह के फल वापस दीजिए। लेकिन कोई उसका जूस निकाल कर दे दे तो दांत वाला और बिना दांत वाला और बड़ा बूढ़ा सब कुछ वो उसको पी सकता है। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने ऐसा तात्पर्य लिख कर दिया जिसको सब लोग समझ सकते हैं, सबको हजम हो सकता है और इससे सब लाभान्वित हो सकते हैं। प्रभुपाद जी ने ऐसा उस तात्पर्य को बहुत ही सरल बनाकर प्रस्तुत किया, इसलिए प्रभुपाद जी का ये तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कहने की बात नहीं है, इसका प्रमाण है कि प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़कर रशियन, चाइनीज, अमेरिकन, पापी तापी सब लोग इसको समझ पाए, समझे हैं। कोई कोई तो इसको उनको देखा नहीं, खाली गीता पढ़ा और वो एड्रेस लेकर मंदिर आए, ऐसे कई प्रमाण। और कई कई शराबी पापी लुटेरे ऐसे ऐसे लोगों के हाथ में गीता पढ़ा बाय चांस, और उन्होंने पढ़ा तो वो लोग भक्त बने, क्योंकि उसने प्रभुपाद जी ने इतना सरल, और दूसरा प्रभुपाद जी की पवित्रता, तीसरा प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त, इसमें पवित्रता कार्य करती है। प्रभुपाद जी इतने शुद्ध भक्त हैं कि उनकी पवित्रता का प्रभाव। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी का ये तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और प्रश्न है? इनका प्रश्न है कि पैगंबर ने अलग संदेश दिया, यीशु क्राइस्ट ने अलग संदेश दिया, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी ने कुरान में से भी थोड़ा ज्ञान, एक बुक लिखा है लॉ ऑफ इस्लाम के, ऐसा करते हैं प्रभुपाद जी ने भी लिखा है कुरान में क्या है, तो कुरान में भी नवदा भक्ति का वर्णन, ये प्रभुपाद जी का जो ये लॉ ऑफ इस्लाम के ऐसा जो बुक है, छोटा बुक है, इसमें देखेंगे तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कुरान में भी नवदा भक्ति का उपदेश है, और बाइबल में भी प्रभुपाद जी कहते हैं, बाइबल में भी धर्म का संदेश है, बाइबल के विषय में भी प्रभुपाद जी कहते हैं, और यीशु क्राइस्ट को भी प्रभुपाद जी मानते हैं, ये भगवान के पुत्र हैं, गॉड सन है। तो प्रभुपाद जी भी इसको महत्व देते हैं। इसका कारण है कि इन्होंने देश काल और स्थिति के अनुसार कई कई प्रकार की स्थिति पैदा होती है। जैसे मोहम्मद हजरत पैगंबर जो आए तो ये रेगिस्तान में ज्यादा ये लोग रहते थे, और आदिवासियों जैसा उनका, इनको कोई ज्ञान नहीं था, या यीशु क्राइस्ट ने जो ज्ञान दिया उस समय की जो स्थिति थी उसके में, तो देश काल और स्थिति के अनुसार भी व्यक्ति को धर्म से संकलन रखने के लिए इस प्रकार का ज्ञान देने के लिए कभी कभी भगवान के दूत आते हैं। लेकिन भगवान के दूत आकर, जैसे कोई पहली कक्षा में पढ़ रहा है और उसको विश्वविद्यालय का ज्ञान देंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं, पालन नहीं, तो उनकी स्थिति को देखकर इस प्रकार का उनको ज्ञान दिया गया देश काल स्थिति के अनुसार। लेकिन इसमें गड़बड़ियां भिन्न भिन्न प्रकार की व्याख्याओं से भी, बाइबल में भी, जैसे बाइबल में प्रभुपाद जी का विरोध किया गया कि आप लोग धर्म परिवर्तन कराते हो, ये कराते, तो प्रभुपाद जी ने पादरियों को बुलाया, बुलाकर कहा कि नहीं, मैं बाइबल में लिखा उसके अनुसार मैं भी शिक्षा देता हूं, लेकिन आप बाइबल की शुद्ध शिक्षा नहीं देते हैं। बोला कैसे? बोला बाइबल में यीशु क्राइस्ट ने लिखा कि प्रत्येक जीव पर दया करो और किसी की हत्या मत करो, ये बाइबल का शब्द है। तो आप लोग ये तो पालन आप भी नहीं करते हैं, शिक्षा भी नहीं देते हैं, बाइबल में ये लिखा है। प्रत्येक जीव पर दया करो, तो आप कैसे मुर्गी मछली ऐसा इनको मार के खाते हैं? तो प्रभुपाद जी से तर्क करते हैं कि नहीं, मुर्गी में जीव नहीं है। अब वो ऐसा तर्क करते हैं, चेतना नहीं, मतलब जीव नहीं है वो चेतना, तो ये तो मूर्खता है। तो प्रभुपाद जी कहते आप ठीक नहीं समझ रहे हो, मैं इनको ठीक समझा रहा हूं। ये इतने बड़े पद पर, गुरु की पद पर रहकर इस प्रकार का बोलते हैं कि मुर्गी में चेतना नहीं है या जीव नहीं है, तो वो कैसे चलती है कैसे? प्रभुपाद जी कहते ये पत्थर है, इसमें जीव नहीं है, ये चलता है क्या? तो इतना भी ज्ञान नहीं है, तो वो लोग इस शास्त्रों का गड़बड़ किए। लेकिन वास्तव में येन केन प्रकार है ना, जीव नास्तिक न बन जाए धर्म से, तो क्रमिक उन्नति। ऐसा हमारे भी शास्त्रों में है, जैसे पुराण है या और भी वैदिक ज्ञान है, कहीं कहीं कर्मकांड की व्याख्या की गई, कहीं कहीं सकाम कर्म की व्याख्या की गई। तो प्रश्न होता है कि वास्तव में जीव का लक्ष्य भक्ति है, तो ये दूसरे दूसरे का व्याख्या क्यों किया गया, दूसरा की क्या आवश्यकता थी? तो क्रमिक विकास, सब लोग शुद्ध सत्व में स्थित हो जाएंगे ऐसा संभव नहीं है। तो कुछ कुछ रजोगुण तमोगुण ऐसे लोगों के लिए भी कुछ कुछ ज्ञान दिया ताकि उनका धीरे धीरे उन्नति हो, तो क्रमिक उन्नति कहा जाता है इसको। इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार के शास्त्र और भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षाएं हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी बहुत समय हो रहा है, अभी मायापुर वासी प्रभु कहाँ हैं? थोड़ा 10 मिनट कीर्तन होगा, और कीर्तन के बाद कुछ अनाउंसमेंट है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आते रविवार को सब भक्त मिलकर सेवा करेंगे प्रसाद बनाने की और दीक्षा करेंगे। जो लोग नहीं कर पाते हैं वे आते रविवार को कृपा करके भागवतम के प्रवचन के बाद आप सुरपुर लाइव में जाकर ये सेवा करेंगे, समूह सेवा। ठीक है,
ठीक है, सब लोग अपने अपने जगह खड़े हो जाएंगे।
पांच मिनट कीर्तन होगा और उसके बाद
सुने उसके बाद सब लोग के लिए वहां पर जाएंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम
Thank you. Bye.